तस्वीर में है और ये तस्वीर को मेरा ख्याल है इन्होंने बाकायदा वो आर्ट वर्क इसके ऊपर हुआ है, उनका खबर नहीं हाशमी तो मतलब तीखे सीधे सादे, खैर सहाफी सीधे सादे तो नहीं होते, आपको भी पता है सहाफी कितने शार्प एंड श्रूड
आज आप सहाफियों के पीछे की पड़ी हुई,
सहाफी बड़े शार्प एंड श्रूड हुआ करते होते हैं, तो दैट्स व्हाट ही इज। उम्र बीती है इसी दश्त की स्याही में और ऑफकोर्स अंदर की खबरों को बाहर निकालने में बड़े माहिर हुआ करते हैं। बहरहाल गीत हम आपकी समातों की नज़र करते हैं, आप समात फरमाइए, इसके बाद हम एक इदारे की तरफ आपको लेके चलेंगे, बहुत खूबसूरत इदारा है वहाँ लेके चलेंगे और एक ब्राइडल प्रोग्राम हो रहा है, ब्राइडल शो हो रहा है 13 मार्च को एक ब्राइडल शो हो रहा है, इसको फरजाना अंजुम ब्राइडल शो को कर रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप इसकी बिफोर टाइम इवेंट ब्राइड के नाम से है इनकी साइट इवेंट ब्राइड, अगर इवेंट ब्राइड पे आप चले जाते हैं eventbrite.ca तो आपको कोई टिकट की प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, $0, बट At the gate, it is $10. आप फरजाना अंजुम से बात कर लीजिए 6478532504 8532504। हमारे भाई हैं अब्दुल कदूस आवान, आपने इस गीत की फरमाइश की, मिस्टर बग्घा की आवाज़ में ये गीत
सारे अली बग्घा
स्टूडियो की ये रिकॉर्डिंग है जी,
सारे अली बग्घा एंड आयमा बेग की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत बाजी समाप्त।
साकू ढोल मनावड़ा है, साकू यार मनावड़ा है, भावे सुरुद दाजी लग जावे, ओ भावे सुरुद दाजी लग जावे,
के वहां बुनाए ऐसा यार मना बुनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, एहो मसलम का बुनाए, एहो मसलम का बुनाए, भावे सिर दी बाजी जावे हो भावे सिर दी बाजी लग जावे जान भी तू तेरी जान दी सौ जिंद जान भी तू
मेरा दिल भी तू दिलदार भी तू दिल दे अंदर दे बार भी तू
संग भी तू मेरा रूप स्वरूप तरंग भी तू
मेरी जिंद भी तू मेरी जान भी तू तेरी जान ते सौ जिंद जान भी तू
मेरा दिल भी तू दिलदार भी तू दिल दे अंदर ते बार भी तू
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਰਟੀਕਲਸ ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ ਹਨੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com
किचन या फिर बाथरूम दी रेनोवेशन ते इको ही नाम याद रखो GK ग्रेनाइट एंड मार्बल कस्टम किचन कैबिनेट्स बार्स वैनिटीज या फिर कस्टम काउंटर टॉप्स होवे वुडवर्क या फिर होवे ग्रेनाइट और मार्बल दे काउंटर टॉप्स एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि चार यानी बेशुमार वैरायटी बेहतरीन कस्टमर सर्विस क्वालिटी वर्क और कीमत ते बहुत ही मुनासिब 7171 टोरब्राम रोड मिसिसागा ताड़ा अपना कीरत कॉल करो 647-534-3789 647-534-3789
आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हैं और वो भी फौरन जबरदस्त रेट्स के साथ और आराम से घर बैठे आपको ये सब मिलेगा बगैर कॉम्प्रोमाइज के अभी डाउनलोड कीजिए Zoom मनी ट्रांसफर ऐप फ्रॉम PayPal That's XOOM Zoom. और अपने मोबाइल से पैसे भेजिए अमेजिंग एक्सचेंज रेट्स के साथ बैंक डिपॉजिट्स, कैश पिकअप या मोबाइल रिचार्ज अब पाकिस्तान पैसे भेजें उंगली के इशारे से। Zoom, a PayPal service, तेज आसान और महफूज मनी ट्रांसफर।
गाड़ियों की हर तरह की रिपेयर के लिए ब्राइट ऑटो सर्विसेज नासिर भाई से राब्ता कीजिएगा। प्रॉब्लम छोटी या फिर बड़ी, आपकी गाड़ी को रुकेंगे हमेशा सड़क पर।
ब्रेक स्पेशल्स, मोस्ट कार्स रोटर्स एंड पैड्स इंस्टॉल्ड, फ्रंट एंड रियर $220 ओनली। सिरेमिक पैड्स, क्वालिटी रोटर्स, मफलर वेल्डिंग $60 ओनली। पहुंचिए आप 8 स्ट्रैटन एवेन्यू डिक्सी एंड एडवांस के कॉर्नर पर।
ओपन 7 days अ वीक Bright Auto Services 905-790-0019।
जी साहब, एक तरह फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आपको, एक मुलाकात की तरफ लेकर के बढ़ती हूँ। यकीनन मैं, आप हम में से बहुत से लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत केयरफुल भी हैं और बहुत कंसर्न्ड भी हैं। बाज़ों का दिल चाहता है कि इस्लामिक एजुकेशन भी एक जगह से मिले और अच्छी तालीम उनको हासिल हो सके। एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे कैम्ब्रिज के इलाके में है, दिस इज़ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने एक कदम और आगे की तरफ बढ़े हैं और स्कूल के जो ग्रेड्स हैं वो आगे तक गए हैं। आई बिलीव ग्रेड 12 तक अब ये स्कूल चला गया है। 1992 में इसको स्कूल का क़याम अमल में आया था, 1992 में, और फिर आगे आगे क्लासेस बढ़ती चली गईं। कहते हैं ना, लोग आते गए, कारवां बनता चला गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर सफदर इनका नाम है और आप हमारे साथ हैं। थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देर आर फ्यू थिंग्स जो कि कमर्शियल के लिहाज से हैं, इट्स बियॉन्ड दिस इंटरव्यू, इज़ बियॉन्ड कमर्शियल, कि मैं आप वालदैन अपने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए जब कंसर्न हुआ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बाज़ औक़ात हम माँ बाप अपने गमे दौरान में इतनी बुरी तरह से दबे हुए होते हैं कि हमें दाएं बाएं का एहसास भी नहीं होता। मेरे अपने बेटे ने जहाँ से तालीम हासिल की, आप यकीन कीजिएगा कि दुनिया जहान के बच्चे उस इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, यानी जो माँ बाप हैं वो और बेशुमार लोग, चाइनीज़ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, कितने अपने बच्चों की तालीम के लिए कंसर्न्ड हैं। इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में मुझे पता चला, और ग्रेड 9 प्रोग्राम जो है उनके बारे में जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वैल्यूज़ टीचिंग्स एंड फिलोसफी की स्कूल की बात करेंगे। डॉक्टर सफदर अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
डॉक्टर साहब आपको, आपने मुझे बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल ले ली। 1992 में इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज का क़याम अमल में आया और आज तकरीबन 150 के करीब बच्चे इसमें मौजूद हैं। किस तरह का इंस्टीट्यूशन है ये?
जी माशाल्लाह, ये इदारा जो है ये कैम्ब्रिज के इलाके में, जैसे आपने बताया, तकरीबन 28 साल से ज़्यादा हो गए हैं
जी सर
इसका क़याम हुआ। हमारा एक पूरा बोर्ड है इस इंटरनेशनल इस्लामिक कैम्ब्रिज बोर्ड जो इसको गवर्न करता है, और इसमें यहाँ के जितने भी इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो इस बोर्ड में हैं। उन्होंने इस स्कूल को बनाया, और ना सिर्फ ये स्कूल, इसके साथ एक मस्जिद है, और अब रिसेंटली हमने स्कूल में इजाफा ये किया है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने डेवलप किया है। एक बहुत बड़ा जिम है और उसमें, जिसमें 10 क्लासरूम्स, नए मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स हैं, उसको हमने ऐड किया है। इसी वजह से 25 साल का सफ़र करने के बाद हम ये समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे इस इलाके में साउथ वेस्टर्न ओंटेरियो में कैम्ब्रिज के आसपास कोई हाई स्कूल नहीं है, इस्लामिक हाई स्कूल नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये सही वक्त है, कम्युनिटी की बहुत डिमांड थी कि ऐसा स्कूल जो कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी काम आए, इस्लामिक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, और साथ साथ जो है वो ओंटेरियो करिकुलम जो है, वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का करिकुलम है उसके, उसको भी साथ चला सके। तो ये इदारा,
जी आप कैरी ऑन प्लीज।
जी मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये इदारा हम ना सिर्फ ये कि मुस्लिम कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम आगे बढ़े हैं, साथ साथ हम ये जो दुनियावी तालीम है, जो ओंटेरियो करिकुलम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम पूरी करते हैं। जब ब्लेंडेड करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं इसमें, और हम बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, साथ साथ کہ ان کا کریکٹر بھی جو ہے وہ مسلم کریکٹر بھی سامنے آئے.
ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ہائی اسکول کا ایڈیشن اسکول میں کیا ہے, اس سے پہلے آپ لوگوں کی پرسنٹیج اور جو ریکارڈ میں آپ کے اسکول میں بچوں کے ریزلٹس کس طرح کے ہوتے تھے اور کیا آپ نے اچیو کیا اس سے پہلے؟
جی ماشاء اللہ یہ تو پورے کم از کم انٹیریو میں مسلم کمیونٹی کے حوالے سے بھی اور میرا خیال دوسرے اسکول بھی جو ہیں یہ جو پبلک اسکولز ہیں ان کے درمیان بھی ہم ایک کمپیٹیٹو معاملہ تو چل رہا ہے وہ کہ یہ پبلک اسکول جو ہیں وہ پبلکلی اور گورنمنٹ کے فنڈڈ اسکولز ہوتے ہیں. ہمارے پاس فائنینشلی ہم کمیونٹی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور کمیونٹی ہی فائنینس کرتی ہے اسکول کو, تو اس کے باوجود ہماری اچیومنٹ لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے اور اسی وجہ سے کریڈیبلٹی بھی ہمارے ادارے کی پبلک اسکولس کے ہوتے ہوئے جو ہزاروں میں ہیں تو ہمارے اس ادارے کی اس لیے کریڈیبلٹی آ گیا ہے کہ فریزر انسٹیٹیوٹ نے اس کو نمبر ون اسکول جو ہے وہ قرار دیا ہے انٹیریو میں.
تھینک یو ویری مچ, آپ نے جو یہ بات کہی اس کا مقصد ہے کہ فریزر انسٹیٹیوٹ کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج کا نام آپ کو وہاں پہ ملے گا.
جی جی بالکل جی. اور دوسری بات گریڈ نائن کی آپ بات کر رہی ہیں تو ہم سپٹمبر 2020 سے گریڈ نائن شروع کر رہے ہیں, وہ اسی لیے کہ کم از کم ہمارے ریجن میں جتنے ہماری مسلم کمیونٹی کی فیملیز ہیں ان کے بچے جو ابھی ایلیمنٹری اسکول سے گریجویٹ ہوں گے تو ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہو کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ کی اور کوالٹی ہائی اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ ایکوائر کر سکیں. تو وی آر اسٹارٹنگ ود گریڈ نائن ایڈمیشن اور ہم گریجولی یہ اس کو فیز وائز نیکسٹ ایئر دا سیم گریڈ 9 ول بی پروموٹڈ ان گریڈ
10
اور ان اباؤٹ 10 ایئرز سوری ان اباؤٹ 4 ایئرز ہم پورا جو ہے ہائی اسکول کمپلیٹ کر لیں گے
اپ ٹو گریڈ 12 اور یعنی یہی کلاسز گریڈ 12 تک جائیں گی.
جی جی انشاءاللہ.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, میری ایک چیز جو میرا کنسرن ہے بینگ اے مدر, آئی تھنک انڈرسٹینڈ کہ ایک انسٹیٹیوٹ کا جو ماحول ہے وہ میرا اپنا ہوگا, وہاں پہ ریلیجن کی بھی بات ہوگی مگر آف کورس جو دنیاوی کریکولم ہے جس پہ ہماری میڈیسن بیس کرتی ہے, جس پہ ہماری انجینئرنگ بیس کرتی ہے, جس پہ ہمارا آئی ٹی بیس کرتا ہے اور یہی ترقی کی منازل بھی ہیں آج کل کے دور میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس. یعنی ایک ماں باپ اگر کسی اسلامک اسکول میں بچے کو ڈال دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ ماں باپ خود جھوٹ بولتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ میرا بچہ اسلامک دار کے اوپر چلے گا, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. دس از بیسیکلی مدر, ماں کی گود ایک ایسی گود ہے جو بچے کو ریلیجن, اپنی ویلیوز, ریلیجن سے مراد میرا قرآن جو مجھے ویلیوز دیتا ہے وہ پڑھانا, مگر ایک اچھا ادارہ جہاں پہ ہماری ویلیوز بھی ہوں اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے جو کہ قوموں کے آگے بڑھنے کی ذمہ دار ہے. اور جیسا آپ نے جو بات کہی اٹس ویری اوتھینٹک کہ اگر آپ میرے کہنے پہ مت بلیو کیجیے گا, آپ فریزر انسٹیٹیوٹ جو ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اسلامک اسکول آف کیمبرج جو ہے, انٹرنیشنل اسلامک اسکول آف کیمبرج جو ہے وہ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ ان کی آج تک کی ڈلیوری کیا رہی. ایم آئی رائٹ؟ اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می.
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ماشاء اللہ. وہ آپ ایک جو ایجوکیشن میں سب سے ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے رول ماڈلنگ.
جی سر.
تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک ماں ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے ہی کریکٹر سے امپریس کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی یہ ٹیچنگ ٹول ہے کہ اگر ہم بڑے جو ہیں وہ ایڈلٹس جو ہیں وہ ماں ہو, باپ ہو, بڑا بھائی ہو, کوئی اچھا نیبر ہو, چچا ماما ہو, یہ سب کے سب جو ہیں ہم بچوں کی تربیت اور تعلیم میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہم اپنے کریکٹر کو سیدھا رکھیں گے ہمارے بچے ہم سے سیکھتے جائیں گے. تو اسی طرح سے ہمارے جو کمیونٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی دے آر آلسو رول ماڈلز فار دی ینگ ون. تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے جو رول ماڈلنگ کی بات کی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو ایویڈنس آپ نے بتایا فریزر انسٹیٹیوٹ کا وہ بھی بالکل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, اور ہماری الحمدللہ اسی وجہ سے پورے علاقے میں اتنی کریڈیبلٹی ہے, ہزاروں پبلک انسٹیٹیوشنز میں یہ کمپٹیشن کرنے کے بعد ہمارے بچوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے الحمدللہ.
ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے خوبصورت بات کہی, اور میں ماں باپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کمپرومائز مت کیجیے گا اپنے بچے کی تعلیم پہ, اور خاص طور پہ ادارہ بہترین ہونا چاہیے نمبر ون, نمبر ٹو نمبر ٹو پہ ادارہ, مگر دا فرسٹ تھنگ از ماں اور باپ کی جو تربیت ہے دیٹ مینس اے لاٹ. اور اگر آپ اپنے بچے کے سامنے غلط بیانی کرتے ہیں, اور اگر ایک ماں اپنے بھائی بہنوں یا اپنے ریلیٹیوز یا اپنے بلڈ ریلیٹیوز یا اپنے دور پرے کے رشتہ داروں کے ساتھ بچوں کے سامنے مس بیہیو کرتی ہے یا برائی کرتی ہے, تو یہ بچے کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو آج کا بچہ ہے یہ کل کا جوان ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ اس نے بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا جو بحیثیت ماں یا بحیثیت باپ آپ سکھا رہے ہیں. مگر اس کے بعد ادارہ, اور ادارے کی کریڈیبلٹی بھی ان انسٹیٹیوشن سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں جو کہ ان تمام اداروں کا کمپیریٹو انالیسس کرتے ہیں کہ کسی ادارے سے جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ کیسے رہے. تو فریزر انسٹیٹیوٹ کی آپ ویب سائٹ پہ جائیے, یو کین فائنڈ اٹ, آئی ریکویسٹ آپ وزٹ کیجئے گا, انٹرنیشنل اسلامک اسکول آف کیمبرج کو وزٹ کیجئے گا, اینڈ یو نو واٹ جسٹ ٹیک یور, اینڈ دس از ناٹ اے اسکول آپریٹڈ بائی اے سنگل مین, it's school governed by the board of governors, am I right sir?
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور یہ وہ لوگ ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, ہمارے بورڈ آف گورنرز میں, جنہوں نے کم از کم 50 سال اپنی زندگی کے اس ادارے کو دیے ہیں, جس میں ملک اختر صاحب ہیں, محمد ڈار صاحب ہیں, خالد کھوکھر صاحب ہیں. یہ میں نام جو لے رہا ہوں, یہ جو ہی یہ ریڈیو پہ سنے جائیں گے لوگ ان کو پہچانتے ہیں.
These are credible names.
جی جی بالکل ہاں.
میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ کے بچے چھوٹی کلاسز میں بھی ہیں, اینڈ اف یو آر لوکنگ فار این انسٹیٹیوشن, تو دس از اسلامک اسکول آف کیمبرج, انٹرنیشنل اسلامک اسکول آف کیمبرج, انٹرنیشنل اسلامک اسکول آف کیمبرج. آپ ان کی کوئی ویب سائٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی؟
جی جی بالکل, ہماری ویب سائٹ ہے www.iso.cambridge.com.
ISOCambridge.com. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.
جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی انٹرنیشنل اسلامک اسکول آف کیمبرج کے بارے میں. صاحب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف بھی, ایک خبر کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. اٹ واز ویری, ہاں شازیہ جی نے مجھے کہا, میں آپ کو پاکستان کے, میں نے بتایا نا یہ لوگ اور تعلیم انسان کو شعور دیا کرتی ہے. بہت سے لوگ منہ اٹھاتے ہیں, تاریخ آئی بلیف سو آپ بھی پروگرام کو سن رہے ہوں گے, بہت سے لوگ بے اختیار پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ دیا کرتے ہیں. میں اور آپ اگر کینیڈا میں آ گئے تو وی آر الحمدللہ وی آر فار گرانٹیڈ ان دا وے کہ ہمیں اس اچھے اور خوبصورت ملک میں رہنے کا موقع ملا, مگر یہاں ہم رہتے ہیں تو ہم تیر کی طرح سیدھے رہتے ہیں. یہاں بھی جس سسٹم کو ہم ابیوز کر رہے ہیں, جو لوگ اس سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں, یہ سسٹم بھی ڈسٹرکشن کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ گاہے بگاہے. مجھے پاکستان سے جس دن آنے کا اتفاق ہو, میں نے آپ سے کہا میرا پاکستان کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہے, اینڈ آئی آلویز, میرے کہنے کی تو بات نہیں ہے, یہاں کے جب پروڈیوسرز آئیں گے وہ خود اپنی زبانی وہاں کا حال بتائیں گے, واٹ ایور دے سو. میں جس دن, مجھے اور ماجد بھائی کو ہماری فلائٹ تھی, اور آر فلائٹ واز آن 21st of February, تو ہم ایئرپورٹ پہ, فلائٹ کا ٹائم صبح 9 بجے, 9:30 بجے کا فلائٹ کا ٹائم تھا, تو وی کیم ٹو دا ایئرپورٹ, نہیں 12:20 پہ فلائٹ کا ٹائم تھا, ہم 9 بجے ایئرپورٹ پہ آئے. تو ہم نے چیک ان کیا, اس کے بعد ایک دم سے میں بھی انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج کی جب بات کیا تو بے اختیار مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک عورت کے اوپر تعلیم کتنی کاؤنٹ کرتی ہے, ایک عورت کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا, اور بینگ اے وومن, دیز وومن آر رسپانسبل ٹو ریز آر مین. یعنی ایک بیٹا اپنی ماں کی گود میں جب پرورش پاتا ہے تو وہ بیٹا کل کا جوان بھائی ہے, اور کل کا جوان باپ بھی وہ ہے, اور پھر اس نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو ایئرپورٹ پہ ہم تھے, اور آل آف سڈن ایئرپورٹ پہ چیخنے چلانے کی آواز آئی, اور ایک خاتون کی آواز تھی, میں ڈر گئی. تھوڑی دور جگہ تھی وہ والی, اور یہ عورت واز یوزنگ ویری ابیوسو لینگویج, اور ये काफ़ी बड़ी जगह थी एयरपोर्ट की। खुदा गवाह है कि मैं पहले समय मुझे मैं फौरी तौर पे उस तरफ को बढ़ी, क्योंकि ये औरत एक तो बैन कर रही थी और एक गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रही थी, बहुत गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रही थी। एंड अनदर थिंग इज बीइंग अ मुस्लिम, हम बाज़ औक़ात अपने उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो कि सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एग्रीवेट कर सकते हैं। तो ये खातून जो थीं, एक तो ये गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रही थी और एक बहुत ऊंची ऊंची बैन कर रही थी। कभी वो ज़मीन पे बैठ जाती थी, कभी वो सीने के ऊपर दोहत्तड़ मारती थी, वगैरह वगैरह। मुझे और आपको पता ही है कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप डोंट लीव अबाउट लीव PIA। अगर आप किसी भी जहाज़ या किसी भी फ्लाइट से PIA तो बहुत अच्छी है, 28 kg सामान पर हेड लेके जाने की इजाज़त देती है। अगर आप किसी और फ्लाइट के ऊपर चले जाएं तो आपको 23 kg 23 किलोग्राम साथ लेके जाने की इजाज़त होती है। आप जो अपना केबिन में बैग लेके जाते हैं उसको आप एक जगह के ऊपर डालने के बाद वो बाकायदा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसको दिखाई जाती है कि कितना बैग आप केबिन में लेके जा सकते हैं और उस बैग में भी वेट कितना होना चाहिए। इसके अलावा जब आप फ्लाइट में चले जाते हैं तो फ्लाइट में अगर आपने कुछ खाना होता है तो यू हैव टू पे फॉर योर फूड। इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी। एनीवेज, एयरपोर्ट पे इस औरत की जब बैन करने की मुझे आवाज़ आई तो मैं फौरी तौर पे उस तरफ को बढ़ी। आई ट्राई टू टेक द वीडियो। तो ये खातून जो थी, अच्छा मुझे फौरी तौर पे ये एहसास हुआ कि ये शायद कोई दुबई साइड पे जाने की फ़्लाइट है, जिसमें ज़ाहिर तालीम का फुकदान जो है ना वो इंसान को ऐसी ज़ुबान बोलने पर मजबूर कर देता है या मायल कर देता है। मगर मुझे बाद में पता चला कि नो, ये टोरंटो के पैसेंजर्स हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि एक टोरंटो का रहने वाली औरत इतनी बदज़ुबान हो सकती है, इतनी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकती है। आप यकीन कीजिएगा, मैं शायद वो गाली और हज़ारों मर्द, अच्छा अब उनके सामने कोई 5-6 आदमी थे जिनको वो गाली दे रही थी। एक शख्स जो था वो दाढ़ी वाले शख्स भी एक मौजूद थे, वॉज यंग बॉय। किसी आदमी ने उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। अब जब कोई जवाब नहीं दिया और जितने पैसेंजर्स थे वो भी खड़े हुए थे, तो अब खातून ने अगला हरबा इस्तेमाल किया। उनके हाथ में शायद कुरान पाक पकड़े हुए थे, तो उन्होंने कुरान पाक ज़मीन पर रख दिए। वहाँ से उन 6 में से एक आदमियों ने वो कुरान पाक उठाया तो इस औरत ने ले लिया। एंड शी सेड, तुमने कुरान की बेहरमती की है। वो कहते हैं ना कि किसी को जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के बारे में भी, आसिया बीबी तो अभी टोरंटो में आ गई, मगर जिस किसी ने भी उसको के साथ पुज्याती की थी, गलत की थी, ठीक है। तो इस औरत ने अगला हरबा इस्तेमाल किया, ये गालियां दे रही थी, गंदी ज़ुबान में गालियां दे रही थी और चीख चिल्ला रही थी। कोई आदमी कुछ नहीं बोला। इन्होंने कोई 8-10 बार इस बात को दोहराया कि तुमने कुरान पाक की बेहरमती की। सारे टोरंटो आने वाले वहाँ मौजूद थे, कोई इस पर भी नाराज़ या खफा नहीं हुआ, वरना उसका ख्याल था कि मैं कुरान की बेहरमती का जिक्र करूँगी तो शायद इन आदमियों को कुटैस लगाने वाले और 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं। कोई इकट्ठा नहीं हुआ। उन आदमियों ने, बल्कि उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, बीबी हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने ख़ुद कुरान पाक नीचे रखे थे। अब मामला शुरू कहाँ से हुआ? मामला शुरू यहाँ से हुआ कि आपको अगर आपके सामान में इजाज़त हो 28 kg सामान लेके जाने की, और अगर उस मेरे अपने सामान में मेरे एक बैग में वज़न 31 kg था, तो जो जहाँ पर मैं चेक इन कर रही थी उन्होंने कहा कि बीबी इसमें 2 kg सामान ज़्यादा है, आप इसमें कोई चीज़ निकालने आए। ओपन माई बैग, आई टुक आउट my 2 shawls and मेरा वजन बराबर हो गया था। इट्स सिंपल स्टोरी, मगर यहाँ पे आके हुआ। फिर उन्होंने हर तरह के एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। मीनवाइल ना एक जवान सा लड़का भी, नॉट जवान, आई मीन ही वाज 35-36 ईयर्स एज का शख्स था, तो उसकी दाढ़ी थी। इस औरत ने उसकी दाढ़ी के बारे में गंदे रिमार्क्स दिए। सिर्फ उस आदमी ने एक जवाब दिया, उसने कहा बीबी दोबारा मेरी दाढ़ी के बारे में बात की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यस, ये ज़रूर उसने कहा, एंड इट इज़ हिज राइट। हमें ज़ुबान को, औरतों को, और मेरा ख्याल है कि मेरी आपकी बहैसियत माँ इतनी तरबियत ज़रूर करनी चाहिए हमें अपने बच्चों को कि अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज का चुनाव आपने कैसे करना है। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पूरा वाक़या आपको बताने का मेरा मकसद ये है, यही वो लोग हैं जब टोरंटो में आते हैं तो तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। मगर जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ का अमला जब आपको रूटीन के मुताबिक चलने का भी कहता है तो आप लोग वहाँ पर उनको अपने मसल्स दिखाना शुरू कर देते हैं, और जब कोई मसल्स आपके नहीं देखता तो आप उनको तड़ी देने के ऊपर आ जाते हैं। प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर बिहेवियर। और ख़ास तौर पर औरतों के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम औरतों को एक शर्म और लिहाज ज़रूर होना चाहिए आंखों में। आप बात करें, मजाक करें, जो मर्ज़ी करें, मतलब इस्लाम में आज से आप 1300 साल पहले भी चले जाएं, 1500 साल पहले चले जाएं, तब भी औरतें मर्दों के शाना बशाना काम किया करती थी, जंगों में औरतें पानी पिलाया करती होती थी। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है। हाँ, हमारे बाज़ उलमा कराम ने इस्लाम को ये समझ दिया कि औरत को आप कुएं में बंद करके रख दें, मगर औरतों ने तो उस ज़माने में भी मर्दों के शाना बशाना काम किया था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर औरतों को अपना थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करना चाहिए, और बहैसियत औरत अगर एक माँ इस तरह का रवैया इख्तियार करती है तो वो माँ रोल मॉडल है अपने बच्चों के लिए। आज उस माँ ने अपने बच्चों के सामने ये ज़ुबान इस्तेमाल की तो कल को वो बच्चे भी उनके डेफिनेटली इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साज़ आवाज़, मैं आपके साथ आरिफा मुजफ्फर। ये तो मैंने पाकिस्तान का एक वाक्या, और आप यकीन कीजिएगा मुझको इतना दुख हुआ था जब मैंने उस खातून को देखा, मैंने कहा वाओ मैन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, एक और ख़बर जो मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, आपको पता ही होगा कि गो ट्रांज़िट सर्विस जो है लेक शोर के ऊपर, उसको आप कवर कर,
ब्लॉकेट की वजह से वो इफेक्टेड हुई है, और उसको रिक्वेस्ट किया गया है लोगों से कि भाई आप ना जाएं उस वक्त। मगर गुड न्यूज़ ये है कि हैमिल्टन में जो ब्लॉकेट था इज़ ऑलमोस्ट ओवर नाउ, जस्ट एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ प्रोटेस्टर्स आर लीविंग दैट प्लेस पीसफुली, और वहाँ से उनको पीसफुली वहाँ हटाया गया है, तो most probably by tomorrow all the lanes going to be open.
Markham is in the stories at the moment. Markham bahut sari kahaniyon mein hai.
By the way, wo jo qatl hua hai wo Markham road pe hua hai, Markham mein nahi hua,
Markham road pe hua hai.
Ha, Markham road runs from Markham to
it's Markham road. No. Markham loves to be chaliye agli baat, chaliye aap us pe argue karne agli baat ki taraf aa jaye.
Ha,
मार्कम में एक कमर्शियल यूनिट्स हैं, वहाँ पे तीन आदमियों को अरेस्ट किया गया। अब तीन आदमियों का क्या था, ये क्यूबैक की साइड से शराब लेके आते थे, कैनाबिस। आपको तो कैनाबिस के यहाँ बाकायदा स्टोर्स बन गए हैं, शराब बेचने के लिए भी आपको परमिट की ज़रूरत होती है। यॉर्क रीजनल पुलिस के मुताबिक उन्होंने मेक शिफ्ट स्टोर मार्कम का जो है उसको उन्होंने बंद किया है, और ये तकरीबन 30 जनवरी की बात है कि पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी।
अगेन, ये बाहर के लोग आके ना वो मार्कम को ख़राब करते हैं, जैसे आप ये इसी में देख लिए, अनिल अनंत 56 इयर्स ओल्ड,
उनका ताल्लुक ब्रैम्पटन से है,
उनका ताल्लुक ब्रैम्पटन से है। रमनदीप सिंह 28 इयर्स ओल्ड, उनका ताल्लुक टोरंटो से है, और तो ये
थर्ड वन द वन हु प्रोवाइडेड द सेफ होम दैट इज फ्रॉम मार्कम,
वो स्टोर चलाते हैं वहां पर।
Whatever, he lives in Markham.
I didn't say live
in Markham. The haven provider is from the Markham, but two other people. One is from the Toronto, who's 28 years of age. Or in tino ke naam janab
majid. Ramandeep Singh, 28 years old. Anil Anand, 56 years old. And alcohol. जो है वो कैनबिस को ये ट्रीट करते थे, $100,000
वर्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं स्टोर में मिली हैं, और ये इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे ये
दिन के वक्त वहाँ मेक शिफ्ट का है, मतलब कि दिन के वक्त वहाँ पर किसी और बिजनेस था, और रात को ये उनकी जगह लेके वो ये बिजनेस किया करते थे।
और जब पुलिस ने पकड़ा भी तो ये शराब वगैरह और ये जो कैनबिस हैं ये ट्रक में से पाए गए,
और उनके पास वहाँ पर लोकेशन पे भी थे, लोकेशन पे और डिफरेंट ट्रक्स में ये चीज़ें थी, और वहाँ से उनको गिरफ्तार करके सारी चीज़ें। आई मीन द पुलिस हैव
भाई, घर का बेदी लंका डाय किसी एक पीने पिलाने वाले को होश आ गया होगा, उससे जाके शिकायत कर।
ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने फॉर लास्ट मंथ्स
30th ऑफ जनवरी को ये रिपोर्ट हुआ था, एंड 30th ऑफ जनवरी से लेके आज क्या होगी 25 तारीख, 25 दिन की इन्वेस्टिगेशन थी, और बाद जी 25 दिन के बाद फड़े गए, 100,000 की प्रोडक्ट मिली है, शायद क्यूबैक से ये शराब लेके आया करते थे, कैनबिस बेचते थे, और वही जैसा माजी जमाल ने कहा, दिन के वक्त और बिजनेस होता था, रात के वक्त और बिजनेस होता था, तीनों के तीनों अनिल आनंद 56 साल के, रमनदीप सिंह 28 साल के, और जो थर्ड वन है दैट इज बिल टेसिक्स 56 साल के, इनका ताल्लुक मार्कम है। अच्छा, आपने कहा मार्कम का स्टोर नहीं चलाते, इज अ मार्कम मैन,
मार्कम का स्टोर चलाते थे।
पुलिस सेज बिल टेसिक्स अ 56 इयर्स ओल्ड मार्कम मैन, व्हाट डज इट मीन?
अनिल आनंद 56 इयर्स ओल्ड ब्रैम्पटन मैन। हमने बहुत जल्द पता क्या करना है मार्कम में, मार्कम में हमने पासपोर्ट बना लेने, आप ब्रैम्पटन वालों तुमको तो मिल ही नहीं रहा पासपोर्ट,
मैं तो वैसे ही नहीं जाना चाहता,
वीजा ही नहीं मिल रहा आपको,
वी डोंट वांट टू गो,
वीजा नहीं मिलेगा दीदी,
वी डोंट वांट टू गो टू मार्कम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू मार्कम,
वीजा
वी आर नॉट इंटरेस्टेड,
आप आएंगे हमारे पास,
आई सेड
कुछ
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट अदनान समी, फिर आई एम नॉट अदनान समी हु इज इंटरेस्टेड टू गेट सिटीजनशिप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू मार्कम,
फिर आप आएंगे कि स्कारपेटी साहब से,
आई लव माय ब्रैम्पटन,
स्कारपेटी साहब से कह दे
I love my Brampton. I love any other place which invites me.
Yeah.
But if somebody doesn't want me be in their guest, I'm not interested to go to that place.
आपको मिल जाएगा
परवाह नहीं, I am not interested.
नहीं आपको नहीं रोकेंगे,
I am not interested.
हम कह रहे हैं आपको नहीं रोकेंगे, हम आपकी बात करवा
देंगे, यानी जो सच इतना कड़वा है कि वो कहते हैं, अ पुलिस सेज बिल टेसिक्स अ 56 इयर्स ओल्ड मैन ऑफ मार्कम, जिसने ये पूरी मार्कम का रहने वाला था और ये फैसिलिटेट किया था, वो बेचारों को दो को तो नौकरी चाहिए थी, अनिल आनंद नौकरी का मारा चला गया 56 साल का, और रमनदीप सिंह 28 साल का नौकरी का मारा चला गया।
ब्रैम्पटन में करें आप मार्कम, मार्क करने की क्या जरूरत है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम,
अच्छा इलाका है ब्रैम्पटन।
वालेकुम सलाम जनाब,
जी जी
क्या हाल है?
बखैर है जी, अभी तो बहुत अच्छा हूँ
जी। ये बार बार रिपीट कर रही है 56 इयर्स ओल्ड, तो आपकी उम्र कितनी है?
मेरी 59।
नहीं ये माजद साहब की आप रगड़ा लगा रही हैं 56 को।
मुझसे ये छोटे नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी देती हूँ।
बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका।
ही इज नॉट यंगर टू मी।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी सर,
माजद भाई साहब इन्होंने पासपोर्ट जरूरत नहीं है, इन्होंने स्पॉन्सर मांगना करना है, माजिद भाई स्पॉन्सर करें हमें।
देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। फिर मैं भी बड़े अच्छे दिल का आदमी हूँ सर, मैं कहूँगा आ जाए आरफा जी, आप आ जाए, परवाह करें।
जी जी बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं इस चीज की कायल हूँ, जो सुख चुबारे वो बलख ना बुखारे।
हेलो,
हाँ जी, हाँ जी
जी, मैं हामिद बात कर रहा हूँ।
जी हाँ भाई,
तो सबसे पहले मैं आरफा बाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जितना अच्छा ट्रिप वो लेके गई है, और उसे जो है पाकिस्तान का इमेज काफी,
अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स व्हाट आई मेंट,
ठीक है। और मैं आपको अगेन बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूँ, क्योंकि ये जो एफर्ट है ना, ये लाइक बहुत कम लोग करते हैं, जो आरफा बाजी ने की है, और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि ये जो 770 के होस्ट हैं, वहाँ गए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और पाकिस्तान के बारे में उनको पता चल रहा है, क्योंकि कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क के जो मीडिया हैं वो दिन रात इतना वो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि लाइक
लोग
समझेंगे शायद, पता नहीं
right.
वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है,
ठीक है। absolutely
जो आपने एफर्ट किया ये इसका कोई जवाब नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आप
जगदीश अग्रवाल ने, क्योंकि ही रन 6 डेज अ वीक न्यूज़पेपर, दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज़पेपर, बहुत थिक न्यूज़पेपर है उनका, उन्होंने अपने अखबार में 8 आर्टिकल लिखे हैं इस ट्रिप से मुतल्लिक, और एक जो उनका एक बयान जो उन्होंने मुझसे वहां पे शेयर किया, उन्होंने कहा कि अगेन जब मैं लिसनर से ये बात कर रही हूँ तो बहुत से लोग जो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बात करते हैं दे हेट मी टू डेथ और वो सोचेंगे कि शायद अगेन मैं कोई कहानी बयान कर रही हूँ. खुदा गवाह है जगदीश जी ने ये बात कही एंड वंस ही विल कम हियर मैं एयर पे उनसे पूछवा दूंगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को जब उन्होंने देखते हैं उनके फेसेस को वो देखते हैं तो उनके चेहरों के ऊपर एक तस्कीन नज़र आती है, उनके चेहरों के ऊपर खुशी नज़र आती है, उनके चेहरे बशाश किस्म के चेहरे हैं. जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए वंसी वेलकम आई डेफिनेटली आस्क हिम कि उन्होंने क्या लफ्ज़ किए जिसके मैं मीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और उन्होंने कंपेयर किया इंडिया के लोगों के साथ उन्होंने उन लोगों के और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल एक और सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल. मिजरीज हैं कोई शक नहीं, प्रॉब्लम्स भी हैं. आप यहाँ जिस दिन मैंने पाकिस्तान ट्रैवल करना था आई रिमेंबर कि मैं उस दिन मेरी फ़्लाइट थी एंड कोई मेरे बेटे को डाउन टाउन छोड़ने वाला नहीं था तो मैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करवा के आई वेंट टू ड्रॉप हिम एट द अपार्टमेंट ना. तो मैं वापस आ रही थी तो रिचमंड और यंग के ऊपर इट वॉज कोल्ड डे दैट डे तो एक आदमी कंबल लेके बिल्कुल रिचमंड और यंग के साउथ ईस्ट कॉर्नर के ऊपर फुटपाथ के ऊपर वो बंदा सोया हुआ था. आई रिमेंबर कि मैंने कोशिश की उससे बात करने की तो बंदा सोया हुआ था. लेटर ऑन आई कॉल्ड माई सन. पावर्टी दुनिया में हर जगह पे यकीनन मैं और आप अगर डॉलर में कमाते हैं तो पाकिस्तान रहने वाला रुपए में कमाता है. उसकी कुव्वत खर्च वो नहीं है जो मेरी और आपकी हो सकती है या क्योंकि मगर फिर भी आप रेस्टोरेंट्स को वहाँ पे अमीर लोग हैं. और मैं इसको इस एंगल से भी देखती हूँ कि अगर उमरा की तादाद ज़्यादा हुई है तो उनके घर काम करने वालों को फैसिलिटीज़ भी तो उतनी मिली, तनख्वाहें उतनी ज़्यादा मिली. मैं 26 साल पीछे चली जाऊँ तो हमारे पास जो लोग हुआ करते होते थे वो 7 days a week होते थे. आज पाकिस्तान में जो काम करने वाली है वो 8 घंटे का काम करती है. दे डोंट स्टे मोर देन 8 hours. दे हैव टेलीफोन्स इन देयर हैंड्स विच इज़ अ कॉमन डिवाइस दीज डेज. वंस दे वर्क इन दीज हाउसेज दे गेट द बेस्ट ड्रेसेस क्योंकि जो अमीर हैं उनके शौक अपने हैं मगर जो उनके यहाँ काम करते हैं उनको उसी लिहाज से फैसिलिटेट किया जाता है. गुरबत इन मुल्कों में भी है. आप देखिए कितनी दुनिया वेलफेयर लेती है. आप देखिए यहाँ पे टोरंटो में बेशुमार फूड बैंक्स हैं जो भरे पड़े हैं और अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो फूड बैंक्स पे डिपेंड करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही. तो मगर ये प्रोड्यूसर्स आएंगे तो वो आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें मेरा कोई दमल दखल नहीं होगा. हो सकता है लेटर ऑन ज़ाहिर उनके मुल्क की मजबूरी भी हो सकती है मगर जो मोहब्बत मिली हम उसका तज़करा आपके साथ शेयर करवाएंगे. अगेन इसमें कोई चीज़ प्लांटेड नहीं थी, कोई चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं थी. हम सड़कों के ऊपर गए, आम सड़कों के ऊपर गए और दैट्स हाउ इट हैपेंड. थैंक यू फॉर योर कॉल. सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साथ. टाइम ही खत्म हो गया. ओ माई गॉड गोज टाइम गो सो फास्ट है ना. पिज्जा प्रोस के इश्तियाक मलिक का नंबर नोट कर लीजिएगा. इश्तियाक मलिक साहब के पास फ्रेंचाइज है पिज्जा प्रोस की. अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर अवेल कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टीम जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे मददगार होते हैं. इन कैमराज के पीछे बहुत से लोग हैं. सरवत होती हैं, शाजिया होती हैं, आमिर हैं, जीशान है एंड ऑफ कोर्स विमेंस डे के हवाले से इस वक्त हमारे नजम भाई और मिन्नो जी भी अपनी पूरी की पूरी कोशिश और काविश में लगे हुए हैं. यकीनन विमेंस डे पे मेरा तो पैगाम यही है कि हैप्पी विमेंस डे बट वी द वुमेन आर स्ट्रांग बिकॉज आर मेन आर सपोर्टिंग अस. आई वॉज प्राउड व्हेन आई वॉज आरिफा हमीद. I was known by my father's name. I was proud when I was Arifa Muzaffar. I was known and recognized by my husband. I am very proud, Allah usko zindagi de, that when I walk with my son, I am known by my son, Mama Muhammad Ali. Hamare mardon ke saath hum auraton ki shaan hai. Ijazat dijiye. I love you all. अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जाने वालों को. दिस इज़ बहुत फ़नी दुनिया है और सबके साथ मेरे मुजफ्फर अली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی, صحت, تندرستی, اپنے بچوں کے سکھ اور خوشیاں دیکھنے کی توفیق دے. آمین سم آمین. اجازت دیجیے, لو یو ٹورنٹو, اللہ حافظ.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Biraj Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
To listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
This station is now the ultimate power in the universe.
The station with the best music. Best music.
I love the music.
I love radio. Music and more.
آپ سن رہے ہیں ریڈیو ساز آواز براڈ کاسٹنگ سروس 24/7. ہماری ریڈیو اور ٹی وی کی سروس کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com یا پھر آج ہی eawaz آفیشیل ایپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کیجیے. لوکل لائن پر ریڈیو سروس کے لیے ڈائل کیجیے 6475571017. eawaz ٹی وی کو آپ تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج ہی روکو ایپ اپنے اسمارٹ ٹی وی میں ڈاؤن لوڈ کیجیے بالکل فری. ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بھی ہم خوبصورت, دلکش, مزاحیہ, معلوماتی اور مذہبی پروگرام سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایڈورٹائزمنٹ یا فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 6478986245. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح بی بی سی نیوز سے سیروین کے ساتھ.
میں ہوں عالیہ ناز کی. آج سیروین کا اہم موضوع ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دلی میں. ان کی آمد پر دلی کے ایک علاقے میں جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات, وہیں شہر کے شمال مشرقی علاقوں میں جھڑپیں اور ہلاکتیں. ہم جائزہ لیں گے کہ حکومت دلی میں تشدد پر قابو پانے میں ناکام کیوں رہی ہے. اس کے علاوہ سیربین میں عجیب ہی شامل ہے, لندن میں زیر علاج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ. حکومت کہتی ہے کہ تازہ ترین میڈیکل رپورٹس فراہم نہیں کی گئیں. और स्पोर्ट्स राउंडअप में देखिएगा स्पोर्ट्स मलबूसात बनाने वाली कंपनी नाइकी के नए जूते पेपरफ्लाई क्या वाकई खिलाड़ियों की रफ्तार में इजाफा करते हैं। आप हमें टीवी पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया का दौरा आज इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस दौरे का जिक्र जरा देर में करेंगे, पहले ये कि दारुलहुकूमत दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाकों में शहरियत के मुतनाज़े तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों और इस कानून के हामियों के दरमियान झड़पों और पुरतशद्दुद वाकयात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई है। ये हंगामे दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हो रहे हैं और इतवार को शुरू होने वाले हंगामों में अब तक दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। दिल्ली से शकील अख्तर।
शुमाल मशरकी दिल्ली की कई बस्तियों में कशीदगी की फिजा इतवार से ही बनी हुई थी। पीर की सुबह से ही शहरियत कानून के हामियों और मुखालफीन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई थी। कम तादाद के सबब पुलिस फसादियों पर काबू न पा सकी। फसादी कल रात देर गए तक हमले करते रहे। मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर मकानों और दुकानों को आग लगाई गई।
दिल्ली के अंदर जहां जहां हिंसा हो रही है वहां वहां दिल्ली की पुलिस ये कहती है इसके पीछे कुछ लोग हैं। कौन लोग हैं? मेरे पास वीडियो मौजूद है जिसमें लड़के जो किस दल के हैं पता करना चाहिए, जो आग लगा रहे हैं मकबरे के अंदर। ऐसे हालात कभी नहीं हुए देश के।
झड़पों में एक पुलिस कांस्टेबल समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। 150 से ज्यादा शहरी और सिपाही पथराव और हमलों में जख्मी हुए हैं।
कहने लगा आईडी दिखाओ। मैंने भाई मेरा, मैं फिर अपना नाम कुछ और बताने लगा तो इतने में एक बंदा हेलमेट उतारने लगा और दूसरे ने मेरे सर पर डंडे बजाए और मेरे फादर को ही मारा, गाड़ी पे से गिरा दिया। गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी हम जलाएंगे। और फिर मेरे को बहुत दूर तक मारा बहुत सारे बंदों ने। फिर एक बंदा कहने लगा पैंट उतार के दिखाओ।
वजीर दाखला अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली के वजीर आला ने सभी जमातों के रहनुमाओं के साथ शहरियों से अमन की अपील की है।
सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब संभव प्रयास करेंगे। सभी अथॉरिटीज ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलके करेंगे।
सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। फसाद ज़दा इलाकों में खौफ और हरास का आलम है। पुलिस मुतासरा बस्तियों में फ्लैग मार्च कर रही है। शकील अख्तर, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं सीनियर सहाफी और द प्रिंट की एडिटर रेनू अगाल। रेनू जी, सरबीन में खुश आमदीद। सबसे पहले तो यही बताएं कि दिल्ली में इस तरह का तशद्दुद सड़कों पर दहाइयों से नहीं हुआ, हो क्या रहा है?
जी, बड़ी हैरान करने की बात है, वो भी एक ऐसे समय में जब राष्ट्रपति ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया में हैं और दिल्ली में हैं। इतना बड़ा ये एक इंसिडेंट होता है और दिन भर आगजनी की घटना होती है, राइटिंग होती है, पुलिस उसे काबू नहीं कर पाती है। दिल्ली वालों ने नहीं सोचा और एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोग इसके लिए इंचार्ज हैं उनके लिए शर्म की बात भी है कि ये बात इतनी कैसे आगे बढ़ गई और वो इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाए।
मैं दरअसल आपसे यही पूछना चाह रही थी कि हालात इतने खराब कैसे हो गए? क्या हुकूमत का जिस तरह का रिस्पांस होना चाहिए था, ये मुल्क का दार हुकूमत है, कैपिटल है, जो वहां की पुलिस है, वो जो वजारत दाखिला होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो क्या अगर वो चाहते वो इसको पहले रोक नहीं सकते थे? क्या हुकूमत का रिस्पांस जैसा होना चाहिए था वैसा था?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिस्पांस कम रहा जितना होना चाहिए था, या तो उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, सोचा नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बयान आ रहे थे जो भड़काने वाले बयान थे और एक तरह से इंडिकेट कर रहे थे लोगों को कि आप इस तरह की कोई वारदात को वारदात करें, तो एक तरह से पॉलिटिकल क्लास ने फेल कर गई अपने जो उसका धर्म था, उसका काम करना था कि लोगों को समझाए, शांति बनाए। बल्कि मुझे लगता है कुछ पॉलिटिशियंस ने भड़काने का काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से आया नहीं और दिल्ली पुलिस का काम भी ना काफी था। مجھے لگتا ہے زیادہ تعینات کی جانی چاہیے تھی پولیس, اور اس کو زیادہ اچھے سے مینج کیا جانا چاہیے تھا.
اچھا رینو جی, یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ اس تشدد میں جو مسلمان ہیں ان کے جو کاروبار ہیں یا جو خود مسلمان ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اس الزام میں کتنی سچائی؟
جی دیکھیے, جس ایریا میں یہ سب ہو رہا ہے وہاں مسلم زیادہ ہیں اور ٹارگیٹ بھی ان پہ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ دوسرے پہ حاوی ہو رہا ہے. تو جہاں ہندوز کے پاس طاقت ہے وہ مسلمانوں پہ حاوی ہو رہا ہے, اور جس علاقوں میں مسلمان کے پاس طاقت ہے وہ ہندوؤں پہ ہے. یعنی بات بالکل ہاتھ سے نکل گئی ہے, اور اس وقت پیراملٹری فورسز وغیرہ فلیگ مارچ کر رہے ہیں اور پیس کو بحال کرنے کی, شانتی بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں.
ٹھیک ہے رینو جی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, ہم آپ سے بات جاری رکھیں گے. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کا آج آخری دن ہے. دونوں ملکوں نے $3 ارب مالیت کی جنگی ہیلی کاپٹرز اور دیگر دفاعی ساز و سامان کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے. دونوں ملکوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہوم لینڈ سیکیورٹی میں بھی اشتراک پر اتفاق کیا ہے, لیکن کسٹمز ڈیوٹی کے سوال پر اختلاف کے سبب اس دورے میں باہمی تجارت کا معاہدہ نہیں ہو سکا. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
Rush is loot! Summer! Chest!
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورے کا آغاز کل گجرات سے کیا تھا, لیکن ان کا باضابطہ استقبال آج دلی میں ایوان صدر میں کیا گیا. صدر ٹرمپ اور انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی بات چیت میں ایک بڑے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. اس کے تحت انڈیا جدید ترین اپاچی اور HM-60 رومیو ہیلی کاپٹر خرید سکے گا. دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے سوال پر بھی قریبی اشتراک کرنے سے بھی اتفاق کیا ہے.
In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens.
صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ بات چیت میں وزیر اعظم مودی اور میں نے اپنے شہریوں کو ریڈیکل اسلامی دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. امریکہ اس سلسلے میں پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مثبت طریقے سے کام کر رہا ہے. وزیر اعظم مودی نے صدر ٹرمپ کے دورے کو غیر معمولی قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے رشتے عالمی پارٹنرشپ کی سطح پر پہنچ رہے ہیں. انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
آج ہوم لینڈ سیکیورٹی پر ہوئے نرنے سے اس سہیوگ کو اور بل ملے گا, آتنک کے سمرتھکوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے آج ہم نے اپنے پریاسوں کو اور بڑھانے کا نشچے کیا ہے.
دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے, لیکن دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بات چیت سے ایک وسیع تجارتی معاہدہ طے پا جائے گا. شکیل اختر, BBC News, دلی.
تو رینو جی, صدر ٹرمپ کے اس دورے سے انڈیا کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے, یا پھر یہ صدر ٹرمپ کے انٹرنل کنزمپشن کے لیے زیادہ تھا؟ آخر اس سال وہاں انتخابات ہونے ہیں اور جو انڈین نژاد آبادی ہے اس کی تعداد کافی زیادہ ہے وہاں.
جی, ٹرمپ کے لیے تو فائدے کا سودا ہی تھا, اور ایک طرح سے ایسے ہی تھا جیسے کہ وہ اپنا الیکشن کیمپین یہاں سے رن کر رہے ہیں. انفیکٹ جو شام کو پریس کانفرنس ہوئی اس میں زیادہ تر جرنلسٹ ان سے امریکہ کے سوال زیادہ پوچھ رہے تھے بنسبت بھارت کے, پاکستان کے, اس طرح کے سوال. تو فائدہ ٹرمپ کو بہت ہوا. بھارت کو یہ فائدہ ہوا کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور مضبوط ہوئی, اور مودی جو چاہتے تھے کہ پرسنل لیول پہ جو ان کی فرینڈ شپ ہے وہ دونوں دیشوں کے بیچ کی جو دوستی ہے اس کو اور مضبوط کرے, اس دشا میں بھی کام ہوا ہے. اور پیسیفک ریجن میں جو کولیبریشن ہے جس کو انڈیا ہمیشہ چائنا کو ایک بڑا فورس مانتا ہے اس ریجن میں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کا جو ساتھ مل رہا ہے, وہ جو کوائٹ کی بات ہو رہی تھی وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا کے لیے. ٹریڈ پہ ہمیں پتا تھا کہ ہوگا کچھ نہیں, کیونکہ نومبر میں جب چناؤ ہوں گے اس کے پہلے کسی طرح کی ٹریڈ ٹریٹی کی بات ٹرمپ اپنے فائدے کے حساب سے اس وقت شاید گھوشت کریں.
اچھا ٹھیک ہے, اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نے آج پھر انڈیا پاکستان کے درمیان ثالثی یا میڈیشن کی بات کہہ تو دی.
جی, ایک بار پھر سوال پوچھا گیا, جواب ان کا اسی طرح رہا کہ عمران خان سے بھی اچھی دوستی ہے, مودی سے بھی اچھی دوستی ہے, میرے دونوں اچھے دوست ہیں, اگر میں آپ دونوں دیش مانیں یا بھارت بولے تو میں بیچ بچاؤ کے لیے, میڈیشن کے لیے آ سکتا ہوں. یعنی آفر ٹیبل پہ ہمیشہ ہی کی طرح انہوں نے ایک بار پھر رکھا.
دلی سے رینو گال, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. سربین میں آگے چل کے دیکھیے گا کہ بالاکوٹ کے نزدیک جابا نامی گاؤں پر ایک سال پہلے ہونے والے انڈین طیاروں کے حملے کے بعد اب وہاں کیا حال ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. حکومت پنجاب نے لندن میں زیر علاج مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ علاج کے اہم مرحلے پر رکاوٹ ڈالنا اختتام قتل کے مترادف ہے. نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے لیے حکمران جماعت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لے دے ہوتی رہی اور آخر نواز شریف 4 ہفتے کے لیے 19 نومبر کو لندن پہنچے. ابتدائی مدت کے اختتام پر نواز شریف کی جانب سے رخصت میں توسیع کے لیے درخواست دی گئی. اس پر پنجاب حکومت نے خصوصی کمیٹی تشکیل دی اور تازہ ترین میڈیکل رپورٹ کا مطالبہ کیا. 15 جنوری کو حکومت نے دسمبر والی میڈیکل رپورٹ مسترد کی اور نواز شریف سے توسیع کے لیے تازہ ترین رپورٹ مانگی. پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے کی پاکستان مسلم لیگ نے مذمت کی ہے. ہمارے ساتھی فراز